ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
இப்படி தர்த்தி மாதா கே ஜித்தனை லோக போஜன கருத்தே சபு அன்ன கேஹூ ஆதி சார சோ பிருத்வி சே ஜோ மே டால்தா குச்சு டாலோ சோ பிருத்வி சே ஆசா பிரி டால்தே உசே சார உசமே ஆதா ஹே வோ சார கிச்சதா ஹே கிச்ச கர்கே உசமே சார ஆகர்கே ஜல கிச்சதா ஹே சார கிச்சதா ஹே பிரசன்ன ஹோகர் ரஹதா ஹே மோதமான திஷ்டதி ஜல பீதா வா பிரசன்ன ஹோகர் விருட்சா ஹே ரஹதா ஹே மர்தா நீ ரஹதா ஹே ஜல பிருத்வி ரச கோ லேகர் கே பிரசன்ன ஹோகர் விருட்சா ரஹதா ஹே இஸ் சோட் லகாய தோ மரா ரச தோடா நிகிலா ரஹதா ஹே अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति, तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति, सर्वं जहाति सर्व शुष्यति। ये वृक्ष में यदा जीव सो व्याप्त होकर के कभी कभी एक शाखा सूख जाती है। यदा एकां शाखां जीवो जहाति, वृक्ष में जीव है, जीव है, जीव एक शाखा को छोड़ दिया, वही मनुष्य कभी वृक्ष भी बन जाता है, जैसे पशु पक्षी बन जाता है वृक्ष भी बन जाता है। गुरु त्वं कृत्य हुं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादत श्मशाने जायते वृक्ष गृध्र कंक्रादि सेवित। गुरु को हुं करके हूं तुम त्वं हुं कृत्य त्वं कृत्य त्वं शब्द गुरु को कहे हुम ऐसे कहे कोई कहते हूं हो नहीं आम एवं होम हां जी हुम कृत्य अथा त्वम त्वम शब्द क्या तुम कृत्य विप्रम निर्जित्य वादत ब्राह्मणों को वाद से परास्त कर ले जीत ले तो श्मशान में वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष तो बनेगा श्मशान में वृक्ष होगा जिस वृक्ष में गृध्र कृच्छ आदि पक्षी रहेंगे। कोई वृक्ष होता है फल देता है लोग उसको फल लेते, कोई पुष्प फल देता है, पुष्प देता है तो भगवान के ऊपर चढ़ाते, कोई फल देता है लोग खाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, वो वृक्ष अलग है। श्मशान में वृक्ष होता है जहां गिरिधर कृष्ण बैठेंगे और खाएंगे कुछ कहें अवक्ष वहां रहेगी जन्म होता है। तो ऐसे ब्राह्मण को जीतने पर ऐसा होता है, ये वो सुना सत्य घटना है। करपात्री जी थे, करपात्र है, करपात्र बहुत विरोध विद्वान थे। हाँ, कुछ दिन ऐसे करके हाथ में भोजन करते काशी में थे। वो विद्वान पंडितों में से थोड़ा सा रहता है कि पहले संन्यास में भी बहुत विद्वान होते, अब पंडित में विद्वता थी, शास्त्रार्थ होता था। कोई एक पंडित का ये करपाती सन्यासी, ये क्या इनको विद्वान कर दिए, क्या विद्वान है, साधु है, इनको क्या ज्ञान है, शास्त्रार्थ हुआ हमेशा शास्त्रार्थ करें। बोलता है इनको आज प्रार्थ करो, एक आज एक घंटा के अंदर प्रार्थ कर लूंगा, वो क्या आप मेरे से उत्तर देंगे। सात्रा तो हुआ, सुबह नहीं हो पाया, शाम को बोले देखो, शाम को देखो एकदम प्रार्थ करना, वो क्या है साधु, वो क्या पढ़े, वो क्या पढ़े, शाम को चला गया। फिर बोले काल को देखो, सुबह सुबह को शाम, शाम को सुबह, ऐसे करके बोले नहीं अभी हो, दो तीन दिन हो गया थोड़ा मेरा ऐसे, अभी अभी आज देखो, मतलब पूर्ण हमारा नहीं हुआ, अभी देखो अभी तो कभी तो वो क्या है, वो बाबा क्या उनका ज्ञान ऐसे करे, वही कम ऊंचा क्या है। एक पंडित थे जो जिनसे मैं व्याकरण पढ़ा था, कुछ विशेष बड़े ऊपर ग्रंथ, वो बोलते हमने देखा था ऐसे कम ऊंचा क्या बोला, अभी पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा देगा, वो क्या है। तो ऐसे एक सप्ताह तक उनका चाला शास्त्र था, ऐसे बोलते बोलते ऐसे ही हुआ नहीं हुआ। फिर पंडित ब्राह्मण लोगों ने उनको कहा, आप सात दिन पहले से रोज सुबह शाम सुबह शाम बोलते हो अभी प्रार्थ कर लूंगा, प्रार्थ कर लूंगा, प्रार्थ कर लूंगा, एक सप्ताह हो गया आपने नहीं कर पाया, और आप परास्त कर दो तो क्या होगा मालूम है। ब्राह्मणों को, ये भी ब्राह्मण है किंतु ब्राह्मण है और सन्यासी है। ब्राह्मण ये जो पंडित है ब्राह्मण है किन्तु ब्राह्मण सन्यासी होने से, सन्यासी होने से इनसे ऊपर है, तो उनको परास्त करना उचित है। आपको अभी सात दिन तक नहीं हो पाया, आप क्या करते हो, क्या आप उनके पास सामर्थ्य, उनके पास सामर्थ्य कुछ नहीं, ऐसे ही साधु है। तो फिर उनके मन में आया, बोले अभी हो एक सप्ताह हो गया, सुबह शाम आप बोलते बोलते कुछ नहीं हो पाया, और आगे आप दुस्साहस नहीं कीजिए। पंडित लोग समझदार बहुत अच्छे पंडित है, फिर वो जाकर के साष्टांग प्रणाम करेंगे, माफी मांगा। आगे साष्टांग तो हुआ नहीं, फिर बाद में कहा हमारी गलती है, हमारा अभिमान था, मैं इसे बोलता था, हमारी गलती है, आपके साथ शास्त्रार्थ करनी ही गलती है, शास्त्रार्थ हमको करना नहीं चाहिए, एक दिन में नहीं करनी चाहिए, तीन दिन तो हुआ, मैं इसमें गम। तो फिर उनके और तो संत फिर ये सब हुआ था, तो उनको जीत लेना भी ठीक नहीं है, तो उनको जीत ले तो सन्यासी को परास्त कर लिया तो भी ठीक नहीं करके वही कहा। पंडित लोग ने बताया, बोले आपके साथ शास्त्रार्थ करनी ही गलती है, पहला शुरू करने ही गलती है, तो अपने में है, ऐसा नहीं करना चाहिए करके। तो ऐसे विप्रम निर्जित वादत शमशान जायते वृक्ष, ऐसे वृक्ष होता है, ये हुआ सब वृक्ष में भी जीवन है, वृक्ष में रहता है, जब एक शाखा को छोड़ देता है जीव तो सूख जाती है शाखा, कभी देखा होगा पेड़ में शाखा सूख जाती है, लोग जाकर उस शाखा को तोड़ कर ले लेते हैं, काट जलाने के जंगल में हम देखे लोग सब घूमते रहते पेड़ में, जंगल विभाग वाले मना करेंगे, जंगल में जाकर देखो साख गया सूखा है तो तोड़ देते हैं, तोड़ करके ठीक करके लोग लेते हैं, एक शाखा को छोड़ दिया तो सूख जाती है, द्वितीय को छोड़ दिया तो वो भी सूख जाएगी, तृतीय को जीव छोड़ दिया वो भी सूख जाती है, इसी प्रकार कभी सारे जीव छोड़ दिया तो पूरा वृक्ष भी खड़े खड़े सूख जाता है, ऐसे देखा गया वृक्ष खड़े है सूख गया मर गया, सूख जाता है तो लोग को काट कर लेते जैसे वो सूख जाता है। इसी प्रकार क्या हुआ, एवं एव खलु सौम्य विधि होवाच जीवा पेतम भाव किलेदम म्रियते न जीव म्रियते इति स ये स्वर्णिमे तदात्मिदम सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वसी श्वेत गेतो इति भूय एवं भगवान विज्ञापयत्विति तथा सम्यति होवाच एवमेव खलु सम्य विधि, ऐसा समझो वृक्ष जिस प्रकार जहां छोड़ दिया वो सूख गया, जब पूरा को छोड़ दिया तो पेड़ सूख गया, ठीक इसी प्रकार जीवा पेतम भाव किलैदम म्रियते न जीव म्रियते, जीव नहीं मरता है, जीव जो छोड़कर चल जाता है तो ये शरीर मर गया नष्ट हो गया, जीव शाखा को छोड़ देने से शाखा सूख गई, जिस शाखा को छोड़ दिया वो शाखा सूख गई, पूरा वृक्ष को छोड़ दिया तो पेड़ सूख गया, जीव चला गया जिसको छोड़ दिया वो सूख गया, जीव चला गया, जीव सूखा नहीं मरा नहीं, जीव चला गया तो सूख गया, ठीक इसी प्रकार जीवा पेतम जीव चला गया, जीव से वियुक्त हो गया, अपेतम अपगतम जीव रहित, तो जीव से जीव जो चला गया छोड़ करके तो शरीर सूख गया मर गया, जो मर जाता है मृत्यु क्या है, जीव चला गया तो मर गया कहते हैं, सूक्ष्म शरीर चला गया तदुपाधि का जीव चला गया, जीव अपगत जीव रहित तो होने पर ही शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है, शरीर मर गया नष्ट हो गया, शरीर को कहीं मृत मृत कहते, जीव नहीं जीव तो चला गया, जीव न मृत कहते मर गया नाम लेकर कहते हमको मर गया हमको मर गया, हमको तो चला गया, तभी आगे उसके लिए क्रिया करते स्वर्ग में कहे कहाँ गया, जीव नहीं मरता है, जीव रहित है शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता है, तो इसलिए जीव रहता है मरता नहीं। और आगे कार्य रहता है जब सुश्रुति अवस्था में रहता है, सुश्रुति अवस्था में रहता है उठ करके, प्रश्न क्या था, सुश्रुति अवस्था में जाकर सद्ब्रह्म के साथ एक हो गया फिर क्यों आता है, तरंग तो नष्ट हो गया जीव क्यों नष्ट नहीं होता है, सद्ब्रह्म के साथ एक हो गया था फिर कैसे क्यों आता है, वो तो मर जाए समाप्त होना चाहिए, तो समाप्त हो गया दूसरे यदि आता, जो पहले कुछ कार्य किया था सोकर उठने के बाद उसका स्मरण होता है नहीं, वो काम बाकी है उसको करना है, उठते ही सोता है मुझे करना है, काल को कहीं जाना सोचा उठते ही सोचना है मुझे जाना है, और जो अंदर है सब स्मरण करता है, जो अपना कर्तव्य स्मरण करता है, कुछ काम किया था उठ करके पूरा करता है, तो जो सोया था वही जगह नहीं प्रमाणित तो हुआ वही जगह, यदि अन्य होता तो उसका पहले क्या किया था वो काम जाकर शुरू करना नहीं चाहिए, तो जन्म आगे सुश्रुति में आता है तो कार्य समाप्त करता है स्मरण करता है, इसलिए वो देखा जाता है वो जीव अमर सुश्रुति काल में जाने के बाद भी समाप्त नहीं था फिर आता है, अर्थात क्या हुआ, अच्छा ये हो गया मरण काल में प्रलय काल में ठीक इसी प्रकार मरते समय जीव चला गया, प्रलय काल में भी जीव शरीर समाप्त हो गया किन्तु रहता है संस्कार, फिर जब जन्म जहां लेता है वो संस्कार कर्म को लेकर के जन्म लेता है फिर सुख दुख होता है, यहाँ भगवान भाष्यकार कहते जंतु स्तन्य पान की इच्छा करते है जन्म होते ही, और जन्म अतीत जन्म पान अनुभव करके स्मरण होता है, स्मरण करके करते हैं। और कर्म जो करते हैं, यदि मरने के बाद फिर नई जीवन नहीं रहे तो फिर इतने पुण्य कर्म दान क्यों करते हैं? दान पुण्य कर्म करते करने वाले की सब लोग स्तुति करते, बड़े पुण्य कर्मा, बहुत कर्म करता है, बहुत दान किया, तो आगे उसका फल प्राप्त होता है। और कर्म जो शास्त्र में विधान किया गया वो सार्थक नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा, मरने के बाद जो नहीं आए, अर्थात प्रलय हो जाए, मरण हो जाए, तो भी जीव समाप्त नहीं होता है। मरण, प्रलय, सुश्रुति, सुश्रुति में जिस प्रकार सद ब्रह्म के साथ एक होने पर आता है, ये प्रमाणित तो हुआ, आकर के जो कार्य बाकी था पूरा करता है। इसी प्रकार मरने के बाद जन्म लेता है तो पूर्व संस्कार है, इसे तन्नपान करता है और अलग अलग चेष्टा करता है, पक्षी की चेष्टा, पशु की चेष्टा, अपने अपने संस्कार के अनुसार वासना रहती है, आता है। तो जीव भी मरने के बाद समाप्त नहीं हुआ, जीव चला गया वो फिर जन्म ले लिया, मरता नहीं। प्रलय होने के बाद भी आता है तो कर्म लेकर के आता है, उसी प्रकार कर्म करता है। जीव नहीं मरता है, जीव छोड़ देने पर शरीर मरता है, इसलिए ये दिया जीव नहीं मरता है, ये प्रश्न था। और जो शुद्ध चिन्ह मात्र है, वही चिन्ह मात्र जिसमें सद ब्रह्म के साथ एक हो गया था, जो ईधन आत्मा को सर्व पहले बताया था, वही सूक्ष्म तत्व है ब्रह्म, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई। ए तदात्म इदम सर्व, इदम सर्व तदात्मक है, और तत्सत्यम वही ब्रह्म सत्य है, वही आत्मा है, और तुम वही हो श्वेत केतु। ये चतुर्थ बार हुआ। फिर श्वेत केतु कहता है भूय मां भगवान विज्ञापय, तो फिर मुझे बताइए ये सदरूप ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म है, नाम रूप रहित निर्विशेष है, ये सदरूप ब्रह्म से ये कहते अत्यंत विलक्षण स्थूल पृथ्वीवादी जगत कैसे हुआ? सदरूप ब्रह्म नाम रूप रहित अत्यंत सूक्ष्म निर्विशेष है, निरवय है, उसी सद ब्रह्म से ये बड़े बड़े सब पहाड़ समुद्र ये सब कहां से आ गया? नाम रूपात्मक है, देखने पर लगता है कुछ निर्विशेष सूक्ष्म तत्व, और इतने बड़े बड़े समुद्र पर्वत, पर्वत देखने से बुद्धि काम नहीं करती, पर्वत कैसे किसने बनाए, कहां से आया, कहां से ला कर रख दिया, ये नहीं। अब कोई उपादान नहीं सद ब्रह्म, वही उपादान निमित्त कारण, कुलाड़ तो मिट्टी ला कर घड़ा बनाता है, और सब सामग्री लेकर बड़े बड़े मकान बना देते, कोई बात नहीं सामग्री लाए बना मकान बन गया, अब कोई सामग्री नहीं और सूक्ष्म है निर्विशेष है, ये सारा ब्रह्मांड को बना दिया, कहां से लाया? अब बड़े पर्वत देखेंगे तो बड़ा पत्थर कुछ बीच में जॉइंट भी नहीं, एकदम एक नीचे से देखो बहुत एक ही पत्थर, ना बनाया ना कहां से लाया, नहीं बनाया तो फिर क्या से आया, कहां से आया, ये कैसे बना, ये सब किस प्रकार अत्यंत स्थूल पृथ्वीवादी नाम रूप वाले जगत अत्यंत सुख नाम रूप हित से कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसको बताइए भूय मां भगवान भी क्या पे, तो ये ज्ञान नहीं होगा तो सद्ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कैसे मानेगी? ये तो है सद्ब्रह्म, मानते सब ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, किन्तु सद्ब्रह्म निर्विशेष है, अत्यंत सूक्ष्म है, नाम रूप रहित है, अब उसी से उत्पन्न हो गया, इतने से स्थूल प्रपंच पृथ्वी जल तेज वायु, कितने विलक्षण है पृथ्वी, कितने कठिन है, कितने बड़े बड़े जल, कितने समुद्र देखो, समुद्र विचार करो, समुद्र कितने समुद्र है, और तेज देखो इतने गर्मी कहां से आ गया, सद ब्रह्म से बर्फ भी कितने ठंडा, अग्नि भी कितने गर्मी, अरे वायु भी कैसे, आकाश ये सब कहां से आ गए, कुछ नहीं था, इसको थोड़ा बताइए। तो पिता का तथा समय तो वाच न्यग्रत फलमत आहारे इतिदं भगवैति भिन्दि इति भिन्न भगवैति किमत्र परिपश्यसित्यान्य इव इमे धाना भगव इत्याशाम अंगेकां भिन्दि इति भिन्ना भगवैति किमत्र पश्यसीति न किंचन भगवैति। का इसको तुम कैसे सूक्ष्म तत्व से इतने स्थूल प्रपंच बना, इसको तुम जानना चाहते हो, इसके प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो बता दे। अतः न्यग्रत फलम अत आहार, न्यग्रत वट वृक्ष सामने खड़ा है, बहुत बड़ा वट वृक्ष, उसका फल ले आओ, एक फल ले आओ, वट अश्वत का फल छोटे छोटे होते हैं, एक फल लिया आ रहा, दौड़ कर गया ले आया, इदम भगव ले आया, दिखा दे इस ले आया, क्या भिन्न दी थी इसको दो भाग करो, तुरंत उसको दो टुकड़ा कर दिया, भिन्न भगव तोड़ दिया। किमत्र पश्यसी, इसके अंदर क्या दिखते हो, क्या दिखे क्या अंदर, बीज छोटे छोटे बीज, क्या अणव इव इमें धामा, अणु जैसे छोटे छोटे दाना बीज, धामा दाना का तो बीज बहुत, अणु जैसे छोटे छोटे बीज भगवान का इतने आसाम अंग एकाम बिंदी थी अंग संबोधन है, इसमें से एक बीज ला करके उसको दोहा करो वेदन करो, क्या भिन्ना भगवान लेकर तुरंत दोहा कर दिया। देखो खरे इसको देखो किमत्र पश्यसी थी, ये बीज के अंदर क्या देखते हो, छोटे बीज है उसको दोहा क्या देख, क्या देखेगा, क्या न किंचन भगवी थी, इसमें कुछ नहीं दिखते, फल के अंदर तो बीज निकला, बीज के अंदर और कुछ बीज है क्या, वो कुछ नहीं छोटे बीज हो क्या, इसमें कुछ तो नहीं है। तंग होवाच यम वे सम्मित अणिमान न निभालेश एतस्य वे सम्मेश अणिम्न एव महान्य ग्रोध तिष्ठति शब्दत सौमेति कहता है यम वे सम्य एतम अणिमानम न निभालेश, जो अणु बीज बिल्कुल छोटा अणु है जिसको तुम नहीं देख पाते हो अंदर क्या है, नहीं दिखता है, देखो एतस्य भी सम्य ऐसा अनिमना इसे सूक्ष्म तत्व से ये वृक्ष खड़ा, देखो ये एक बीज से इसे वृक्ष बन गया, जिस अणु छोटे बीज को देखकर तुमको तो कुछ नहीं दिखता, तुम्हारे हाथ पर है इतने छोटे बीज उसमें कुछ नहीं, उसमें से इतने बड़े वृक्ष देखो उत्पन्न हुआ, वृक्ष भी कितने मूल भी कितने बड़ा, वो बट अश्वतादि वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, शाखा फैल जाती है, शाखा से कुछ नीचे आता है वो भी जड़ पकड़ लेता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, कितने बड़े वृक्ष, पत्ता कैसे फल कैसे कितने सब है, ये बड़ा एक बीज इसमें क्या इसमें से ही बना, एतस्य वे निम्न महान नग्रोत तिष्ठति श्रद्धत सम्मेति, कहती है श्रद्धा करो, यद्यपि ये स्थूल प्रपंच नाम रूपादि कार्य सद ब्रह्म से हुआ, आगम से श्रुति में कहा गया, तर्क से निश्चय होता है, फिर भी अत्यंत सूक्ष्म विषय में जब मन बाह्य विषय में आसक्त हो वो ग्रहण नहीं होता है, बाह्यासक्त मन है तो ग्रहण नहीं होता है, जब अंतकोण शुद्ध थोड़े नहीं हो तो वेदांत श्रवण में रुचि नहीं होती, वेदांत श्रवण से ग्रहण नहीं होता है, द्वेष करते करते क्या वेदांत से क्या मिलेगा, ना भजन है ना भगवान का नाम है ना कीर्तन है ना नाचना है ना कूदना, नहीं ये ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, कोई गए रज्जु सर्प रज्जु सर्प दृष्टान्त जब देते रज्जु सर्प, कुछ लोग गए अपर तीर्थाटन करने के लिए, सात पांच सात दिन के बाद आए कहते वही रज्जु सर्प, ये बोलते शायद ये बाबा लोग कहीं कुछ सर्प घुसा हुआ है इनकी चिंता है, बोले उसको मार कर जाएंगे, बताए बाबा लोग हमको बताओ कहाँ सर्प है, साथ बोलो हम आप मार देंगे क्योंकि जब गए तो सही सर्प विचार आ गया तो वही सर्प मतलब जरूर किसमें कहीं घुसा है, इन लोग भय करके डरते तो उन लोग सामान्य बहुत लोग होते सर्प को कोई पकड़ लेते कोई मारते, सर्प पकड़ने वाला होता पकड़ लेते, गुजरात में देखा कुछ लोग होते कहीं याद है आपके वहां पता चलता है उनको खबर दो आकर के पकड़ लेते हैं, उनको पता है पकड़ करके कैसे रखना बोरे में भर करके, कहते मानना नहीं उसको लेकर दूर में कहीं छाड़ते हैं, ऐसे पकड़ते पकड़ के पूछ की तरह कहीं पकड़ लेंगे, और वो राजस्थानी में दिखाता है एक पूछ की तरफ उसको पकड़ लिया ऐसे पकड़ करके ऐसे रखा, वो सर पे ऐसे करता है किन्तु पास में दूर में ऐसे रख करके ऐसे रखा ऐसे बोलाता है, तो पूछ की तरफ पकड़े तो सर पर थोड़ा ऐसे उठेगा इतने से करेगा और कुछ नहीं करता, जो पकड़ते हैं और मुख की तरफ भी कोई पकड़ लेते हैं जानने वाले से सास कर पकड़ लेते हैं इसे पकड़ कर रखते हैं फिर बोरी में भर्ती करते हैं, तो रज्जु सर्प वेदांत का, तो जिस अंतकरण शुद्ध नहीं हो तो ये तत्व ग्रहण नहीं होता है, सूक्ष्म विषय है बाह्य विषय में आसक्त मन हो स्वभाव से प्रवृत्त होता है इधर उधर मन, बाह्य विषय जो चिंतन करता है अत्यंत सूक्ष्म, ये वेदांत शास्त्र क्या कोई कुछ विषय पढ़ते हैं उसमें बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो तो सब लोग ग्रहण नहीं कर पाते, किस किसी बुद्धि सूक्ष्म है तो बहुत पढ़ लेता है बहुत समझ लेता है, कोई कोई नहीं समझ पाते, कोई कोई विषय किसी किसी विद्या में इतने दिमाग लगाना पड़ता है कोई बहुत दिमाग ला करके सफल हो जाते हैं और कोई कोई नहीं कर पाते दुर्भाग्य, नहीं तो असफल हो जाते हैं। पढ़ने में कितने होते, कितने बहुत आगे बढ़ते, कोई नहीं कर पाते। ये सामान्य शास्त्र में तो इसे है, ये तो बिल्कुल अत्यंत परम तत्व है। अधिक श्रद्धा के बिना उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रद्धा होने पर ही मन एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा तो तभी अर्थ ज्ञान होगा। अन्यत्र मनाभुवम ना सौसम, मन अन्यत्र चले गया, सुन नहीं पाया। बोलते समय देखते समय आंख खोला है, कान भी खोला है, कोई बंद करना नहीं पड़ता है, किंतु मन कहीं चला गया तो सुनाई नहीं पड़ा। पूछेंगे तो कहेंगे क्या कहा, क्या पूछा है, क्यों सुना नहीं। दो बार पूछेंगे, दूसरी बार कहेंगे तो सुन नहीं पाया, कान तो खोला है, मन चला गया तो सुना नहीं पड़ता है। ये सामान्य बात में भी, और ये वेदांत तत्व के लिए समझना, खाली समझ लेने से नहीं होता है। शब्द अर्थ समझने के लिए तब एकाग्रता चाहिए, और उसका ज्ञान साक्षात्कार करने के लिए जो तर्क बताते हैं उसके साथ साथ दिमाग चले, तर्क का ग्रहण करे, उसको लेकर विचार करे। अत्यंत गुरुतर श्रद्धा होने पर सामान्य अनुमान करते हैं प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद रज्जु सर्ववत। एक अनुमान है तर्क, ये व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाना। प्रातिभाषिक दृष्टान्त है रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य मिथ्या है, सबको निश्चय है। सपने में जो दिखता है सब मिथ्या है क्या? देखते समय, सपने देखते समय लगता है सत्य है ना नहीं? सपने देखते समय सत्य है ना नहीं? नहीं सत्य है ना ही प्रश्न। राज्य में जब सर्प ब्रह्म होता है, ब्रह्म काल में सर्प सत्य है नहीं? ब्रह्म काल में सत्य है, मिथ्या है तो जिस प्रकार प्रातिभाषिक मिथ्या है, इस प्रकार पूरा व्यावहारिक प्रपंच में झगड़ा है, विवाद है। कोई कहते सत्य, कोई कहते मिथ्या, इसको अनुमान सिद्ध करते हैं। वहां महानस में धूम निकलता है, बनी है, उसको दृष्टांत बनाया, किस पर्वत से धूम निकला है जोर से नीचे से ऊपर, अनुमान करते पर्वत बन्नी महान धूमात महानस के समान, क्योंकि जहां इसे धूम निकलता है नीचे से ऊपर अभिच्छिन्न मूला रेखा, खाली धूम ऊपर हो गया वो नहीं, नीचे से ऊपर निकल रहा है तो निश्चय अग्नि है। अनुमान के द्वारा, अनुमान के प्रमाण है, अनुमान प्रमाण से बनी सिद्ध जैसे करते है, ये व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाया। ये प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दृश्य है, अनुभव ज्ञान का विषय, जो ज्ञान का विषय होता है जिसको हम जानते हैं वो मिथ्या है। जैसे प्रातिभाषिक दृश्य श्रेष्ठ स्वप्न प्रपंच, जैसे राज्य सर्प, इसी प्रकार प्रपंच मिथ्या तो अनुमान करने के लिए और भी अनुमान है, उसको जितने जितने विचार करे तो दृढ़ होता है। न्यायिक लोग बड़े तर्क में कुशल कि अनुमान का खंडन नहीं कर पाते हैं। अनुमान कहने पर कैसे मिथ्या कैसे होगा, मिथ्या कैसे होगा, मिथ्या कैसे होगा, मिथ्या कैसे होगा, मिथ्या कैसे होगा। कोई न्याय पढ़ लिया वेदांत पढ़ते समय, जिनसे न्याय पढ़ा था उनसे वेदांत पढ़ा, आचार्य पढ़ लिया, होता मिथ्या कैसे होगा, मिथ्या कैसे होगा, और डांटे तूने न्याय पढ़ा, ये अनुमान में दोष बताओ, वो तो मिथ्या कैसे होगा, मिथ्या उसे अमूर्ख जैसे बोलते हो, मिथ्या कैसे होगा, ये तो अनुमान तर्क पढ़ने वाले, न्याय को पढ़ने वाले ये शब्द कहेंगे। तुम बोलो अनुमान में दोष क्या, अनुमान में दोष हेतु आवास दोष होता है, अनुमान में दोष क्या है बोलो, अगर तो मिथ्या कैसे होगा ये क्या बोलते हो, मिथ्या कैसे होगा इसका क्या मतलब, मिथ्या कैसे होगा, मीठा क्यों लगता है, क्यों मीठा लगता है, बर्फ ठंडा क्यों, ये कोई प्रश्न है, अनुमान में दोष बताओ, और दोष उसको नहीं निकलता है, कहते बाद हो जाएगा, प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखने से सत्य होता है क्या, प्रत्यक्ष तो सर्प देखते हैं, सपने में प्रत्यक्ष देखते हैं, सत्य है क्या, चंद्र कितने बड़ा दिखता है प्रादेश इतने, प्रत्यक्ष दिखता है उसको मानते प्रामाणिक ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक लोग बताते चंद्र कितने बड़ा, प्रत्यक्ष दिखने से सत्य मानेंगे, तो इसे प्रत्यक्ष दिखने पर भी सत्य कैसे निश्चय होगा, अनुमान के द्वारा सिद्ध करते। इसमें श्रद्धा अत्यधिक होने पर अनुमान का ग्रहण करना, विचार करना तभी होता है। श्रद्धत्व स्वमेति, श्रद्धा करो कह करके फिर उसको उपदेश कर चतुर्थ बार हुआ, आगे बताएंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।